Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adiguru Shankaracharya Virachit दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ् निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रवाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभातेतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशम्वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामस्यम् मन्दतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना वेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं वांशनलोनिलोऽम्बरमहर् नाथो इमां सुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तदा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्।
दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अंतर्गत पांचवें श्लोक की व्याख्या है। शंकराचार्य कहते हैं,
देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
इस श्लोक में आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी यथार्थ तत्व के बारे में, कितने लोग भ्रांत हैं इस बात का उल्लेख करते हुए, और इनकी भ्रांति कब टूटेगी, कौन तोड़ेगा, भगवान दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति शिव की जब कृपा होगी तभी इनकी भ्रांति टूटेगी, तब यथार्थ वस्तु का इनको बोध होगा, अन्यथा वास्तव में यथार्थ परमात्म तत्व का बोध नहीं हो रहा है और सभी भ्रांति के चलते अपनी ही अपनी वाद अपने अपने सिद्धांत का आलाप कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। कौन कौन है इस प्रकार से परमात्मा के यथार्थ तत्व को न जानते हुए भ्रांति से अन्य वस्तु को यथार्थ तत्व मान रहे हैं? सबसे पहले देहात्मवादी चार्वाक सिद्धांत का संकेत किया है। सबसे पहले तो वो चार्वाक हैं, परमात्मा ने ही उनको जन्म दिया, परमात्मा ने ही उनको जीवन दिया, और उसी परमात्मा ने उनका मन दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, सारे साधनों से संपन्न बनाया, फिर भी उन साधनों का सदुपयोग न करके वे लोग वाक् चातुर्यता का प्रयोग करते हुए उस परमात्मा की स्मरण नहीं करते हैं, उसके प्रति उनकी बुद्धि नहीं जाती है, और स्वयं तो भ्रांत है ही हैं, अन्यथा को अन्यथा मान रहे हैं, साथ साथ ही अपनी संप्रदाय बढ़ाने के लिए अन्य को भी भ्रांत कर रहे हैं, इसलिए उनको उनके पीछे लगने वाले संख्या बहुत ज्यादा है। ये तब की बात नहीं है, आज भी, और आज तो और भी ज्यादा है उनकी मेजॉरिटी में उनके पीछे लगने वालों संप्रदाय, क्योंकि वे चार्वाक हैं, चार्वाक के जमाना है ये। सत्य एक तरफ होता है, कथन दूसरी तरफ होता है। ये तो जो जितने प्रबल तर्क और युक्ति से वाक् चातुर्यता से जो अपना पक्ष रख सकता है उसी का ही आज जमाना है। इसी को चार्वाक, आज सारा संसार चार्वाकियों का साम्राज्य भरा हुआ है। चार्वाक शब्द का दो व्युत्पत्ति किया, चारु वदती इति चारुवाक, बोलने में बड़ा चतुर है जो, अन्यथा नहीं लेना, कोई वकील होगा तो वो चारवाक ही होगा है, इस अर्थ में हाँ, इस व्युत्पत्ति से, अन्यथा नहीं लेना कोई वकील हो हाँ, क्योंकि उसका पैसा ही चारवाक है, उसका बिजनेस ही चारवाक है। वो तो बोलने में कुशल नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, तब वो वकील हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सामने वाले की वाणी को वह इस तरह किल देना है कि आगे वह अर्थबोध करने की क्षमता न हो, अन्य युक्तियों को लाने की क्षमता से रहित हो जाए। वाक किलम, वाक वाणी को किलने वाला, किल दिया, अब उसके बुद्धि से, उसके वाणी से, उसके तर्क को काटने की युक्तियां बाहर नहीं निकल सकती है और क्योंकि वो बहुत युक्ति से बोलना पड़ता है उसको, चारुवाक यानी सुनने में बिल्कुल सत्य लगे और सुनने वालों को बहुत अच्छा भी लगे। चारुवाक संसार तो उसी के पीछे है, इसी को वाक चातुर्य, इसी को चाटुकारिता भी बोलते हैं। बड़े के सामने छोटे लोग यही करते हैं, अरे आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके आश्रय तो हम जी रहे हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे आश्रयदाता हैं, आप समस्त गुणों के खानी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। मांगने वाला भी इस प्रकार के शब्द झड़ी लगाता है ना, जब तो सामने वाला व्यक्ति दिए बिना रहता ही नहीं है, उसके देने की इच्छा होती है, क्योंकि इस प्रकार के वह फ्रॉड शब्द झड़ी लगा रहा है फोकट में है। पहले के राजा लोग तो तनख्वाह देकर प्रशंसा करने के लिए आदमियों को नियुक्त करते थे, अब कम से कम वह इतने इतने शब्द प्रयोग कर रहा है तो एक रुपया तो दो, ज्यादा नहीं दस रुपया दो, आज तो एक रुपया का जमाने ही खत्म हो गया है, है ना, एक रुपया का तो जमाने ही खत्म हो गया। चारुवाक इस विश्व में सबसे स्थूल दर्शन है, ये बहुत ही स्थूल दर्शन, देहात्मवादी चारुवाक। चारवाक के आचार्य कौन है? चारवाक दर्शन के आचार्य प्रहलाद का पौत्र विरोचन, प्रहलाद का विरोचन है, नहीं पुत्र है, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, पौत्र तो बलि हो गया, पुत्र विरोचन है। बाप भगवान का परम भक्त और बेटा शरीर का परम भक्त, ले देखो कितना विपरीत है, देहात्मवादी बेटा हो गया, परमात्मवादी बाप हो गए, इसका कारण क्या है भाई, इतना फर्क क्यों पड़ गया? ये तो प्रहलाद जी को तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, सद्गुरु प्राप्त हो गया मां के गर्भ के अंदर ही, प्रहलाद जी को तो मां के गर्भ के अंदर ही गुरु प्राप्त हुआ है, और इसीलिए गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति, भले ही उनको नारद कहो तुम, हम लोग नारद कहते हैं भले ही, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने ही उनको उपदेश किया था, लेकिन नारद के रूप में ही साक्षात दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ही प्रहलाद को तत्व का उपदेश करने के लिए वहां पहुंच गए हैं, इसलिए हमारी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के दृष्टि से जितने भी गुरु हैं सभी दक्षिणामूर्ति हैं, और जितने भी दक्षिणामूर्ति रूप गुरु मूर्ति हैं वो साक्षात शिव का ही स्वरूप हैं, शिव से भिन्न नहीं है। वो केवल उपाधि अलग अलग हो सकता है, अलग अलग उपाधियों में वही शिव, अलग अलग नाम अलग अलग रूप में वही शिव, एक ही शिव गुरु मूर्ति के रूप में सबके सामने उपदेश करते हुए तत्व का ज्ञान देते हैं और भ्रांति का निवारण करते हैं। यहां उसी का स्मरण किया है, भ्रांतः वृषम्वादिना, ये सभी भ्रांत हैं, उनके भ्रांतियों का निवारण तो एकमात्र दक्षिणामूर्ति गुरु रूप दक्षिणामूर्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी को तो नारद जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए, मां के गर्भ के अंदर रहते हुए ही। इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के वंशनाश करने के लिए हिरण्यकश्यपु की पत्नी को, तयाधु को, जब प्रहलाद गर्भ में थे, हरण करके ले जा रहा था, बीच में नारद जी पहुंच गए, कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, ये तो स्त्री को कहां लेके जा रहा हो। बोले इसके वंशनाश करना चाहता हूं हिरण्यकश्यपु के, क्योंकि इसके पेट में हिरण्यकश्यपु का वंशज है, बीज है, और ये जन्म लेते ही मैं मार डालूंगा, इसलिए लेके जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि गलत व्यक्ति को मारना कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो यह है कि गलत व्यक्ति को सुधार सको, यही पुरुषार्थता है। यदि तुमने मार दिया गलत व्यक्ति को तो उससे क्या पुरुषार्थता हो गई, एक मारोगे दूसरा पैदा होगा, दूसरा मारोगे तीसरा पैदा होगा, तीसरा मारोगे चौथा पैदा होगा, लेकिन तुम एक गलत व्यक्ति को सुधारोगे तो वो सुधरा हुआ गलत व्यक्ति दूसरों को सुधारेगा, और तुम तो सुधारोगे सुधारोगे वह भी सुधारने के लग जाएगा, और वह जिसको सुधारेगा वह भी और को सुधारने लग जाएगा। इसीलिए यदि एक को सुधार सको तो इस सुधारने का क्रम इस तरह शाखा प्रतिशाखा न्याय से जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा कि सारा समाज सुधर सकता है। तो नारद जी ने कहा इंद्र को, तो नाश करने की बात नहीं करना, सुधारने की बात करो। अरे हमने तो नाश करने के उद्देश्य से कयाधु को हरण करके लाए हैं, तो अब क्या करेंगे, तू सुधार नहीं सकता है तो मैं सुधारूंगा, छोड़ दे, मैं अपना आश्रम है जंगल में, पर्णकुटी है, वहीं रखूंगा, वहीं पालूंगा, जब पैदा होगा तो फिर ये सुधरा हुआ पैदा होगा, ये राक्षस होकर पैदा नहीं होगा, ये भगवान का परम भक्त होकर, संत होकर, गुरु मूर्ति होकर पैदा होगा। तो इंद्र ने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो नारद जी ले गए अपने आश्रम में कयाधु को, और गर्भस्थ शिशु को सुधारने के लक्ष्य से ही कयाधु को सुनाते हुए दिव्याति दिव्य भगवत लीला, भगवत चर्चा, भगवत भक्ति, ज्ञान, योग, भक्ति सबका उपदेश करते हुए परमात्मा में परम निष्ठा भाव को जगाते हुए उपदेश किया, लक्ष्य है गर्भस्थ शिशु को सुधारना, वंश सुधारना। आजकल जो है हाइब्रिड का जमाना आ रहा है, जहां देखो वहीं हाइब्रिड है, तो क्या है ये, बोले नस्ल सुधारने का है ना, मुझे लगता है यही है ना हाइब्रिड की जो जमाना, नस्ल सुधारने का, अच्छा उत्पादन हो, क्वालिटी के वस्तु उत्पादन हो, उस कहते हैं हमने नस्ल सुधार ली। अरे मूर्खो, तुम अपने नस्ल बिगाड़ते जा रहे हो और अनाज के नस्ल सुधार रहे हो, वनस्पतियों की नस्ल सुधार रहे हो, और अपने नस्ल को सुधारने का तुमने क्या प्रयत्न किया, बोलो। विश्व ने कोई मिशन चलाया है मानवीय नस्ल सुधारने के लिए है? चलाया है, जबकि विश्व एक ही पक्ष में लगा है कि मानव किस तरह बिगड़ जाए। ये जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनको तो मानव बिगड़े तभी उनको फायदा है, मानव सुधर जाए तो क्या फायदा है। इस बात को लेकर आजकल रामदेव जी खूब लगे हैं, है? रामदेव जी लगे हैं, लगे तो हैं, कितना सफल होते हैं देखते हैं, लगे हैं बेचारे। भारत स्वाभिमान बिगाड़ने वालों के विरोध में मोर्चा खोल लिए उन्होंने, चाहे वो घरेलू बिगड़ेल हो चाहे वैदेशिक बिगड़ेल हो, सब बिगाड़ने वाले बिगड़े हुए के विरोध में मोर्चा खोल लिया है। ईश्वर करे कि उनका मिशन सफल हो, है? लेकिन कितना होगा। तो नारद जी सफल हो गए अपने मिशन में। जब पैदा हुए प्रहलाद जी तो क्या परम भगवान के परम भक्त के रूप में पैदा हुए, और उनके तो परमात्मा भाव से अतिरिक्त और दूसरा भाव ही नहीं है। भगवान का परम भक्त हो गए और उन्हीं के वंश में फिर पैदा हो गया विरोचन, प्रहलाद का बेटा विरोचन। अब यही प्रहलाद जी गलती कर गए कि अपने बच्चे को सुधार नहीं सके वो, जैसे हम लोग गलती करते जा रहे हैं। हम लोग खुद सत्संगी हो रहे हैं, बच्चों को सत्संग में प्रेरणा नहीं कर रहे हैं। हम खुद संतों और सब महात्माओं का, गुरुओं का आदर करते हैं और बच्चों को आदर करने की बात सिखा नहीं पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं हम। वही हाल प्रहलाद जी का हो गया है। कुत्त सुधर गए, राक्षस कुल से देव कुल में पहुंच गए वो, लेकिन अपनी जो प्रहलाद अपने ही बेटा विरोचन उसको नहीं सुधार सके। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, अब विरोचन राज्य के योग्य हो गया है, तुम चलाओ राजपाट, अपने तो चलते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति है। ये संस्कृति और पाश्चात्य में ये वाक्य नहीं है, सही सबे अभ्यस्त विद्या नाम, वहां ये उपदेश नहीं दिया गया है। यौवने विषयिषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम ये उपदेश नहीं है वहां, और योगे नान्ते तनुत्यजाम इसकी तो और भी कल्पना ही छोड़ दो। जब वार्धक्य में मुनिवृत्ति नहीं है तब फिर योगे न अंते तनुत्यजाम ये बात कहां आएगी। वहां तो जन्म से मृत्यु तक केवल एक ही भावना है कि कैसे भोग विलास करें, कैसे कितनी क्षमता से भोग विलास करें, संसार के पदार्थों को भोग सकते हैं। आज परिणाम ये हो रहा है कि 10 वर्ष के बच्चे जो पूरी तरह ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर विद्या साधना में लगनी चाहिए, वे सब के सब गुंडे हो रहे हैं। मां बाप रो रहे हैं उनके, तुमने क्या दिया उनको। प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, बच्चे को सुधार तो नहीं सका लेकिन अपने को तो सुधार सकता हूं। दे दिया राजगद्दी और चले गए साधना करने, भगवत भक्ति में वार्धक्य मुनिवृत्ति को धारण कर लिया उन्होंने। और विरोचन, वो तो विरोचन ही है। तो हमने कई बार विरोचन शब्द का अर्थ किया है, बाहर के पदार्थों को रुचि पूर्वक देखने वाला जो व्यक्ति है उसी को विरोचन कहते हैं। तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा। बाहर के पदार्थों को तो बड़े प्रेम से, बड़े रुचि से, बड़े चाव से, बड़ी आत्मीयता से देखता है। देखता है इतना ही नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए सारा प्रयत्न करता है। इंद्रियों से बाहर के पदार्थों को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है विरोचन। और इंद्रियों से जो भी खोजेगा, यदि परमात्मा को भी इंद्रियों से खोजेगा तो ये निश्चित समझ लेना कि वो विरोचन है। परमात्मा को ध्यान दे लेना, इंद्रियों से परमात्मा को जो खोजेगा ये निश्चित समझ लेना कि वो विरोचन ही है। क्योंकि इंद्रियों से जो दिखाई देने वाला है वो दृश्य होगा, और जो दिखाई पड़ेगा वह दृश्य होगा। दृश्य जड़ होता है और जड़ अनात्मा होगा, परमात्मा तो होने की बात ही नहीं है। आंख से दिखाई देने वाला व्यक्ति या वस्तु आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा युष्मद पद का अर्थ है ही नहीं कि जो आंखों से दिखाई पड़े। आंखों से माला दिख रहा है, इस माले को हम हमेशा युष्मद कहते हैं, अस्मद नहीं कहेंगे। ये माले की माला कभी भी मैं नहीं कर सकता है, न माला मैं कर सकता है, न मैं कह सकता हूं इस माला को लेकर। तो ये युष्मद है, यह है, और जो युष्मद है वह कभी भी अस्मद नहीं हो सकता है, और वो कभी इंद्रियों से, अस्मद इंद्रियों से नहीं दिखता।